सी मंथनी उपदेश लेखिका एक अज्ञात हिंदू औरत, भूमिका संपादन तथा अन्य शोध लेख डॉक्टर धर्मवीर, वाणी प्रकाशन, 21A दरियागंज, नई दिल्ली 110002। भूमिका 2। व्यभिचार एक बुराई नहीं बल्कि कई बुराइयों की जड़ है। इन्हें व्यभिचार वर्ग की बुराइयां कहा जाना चाहिए। सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने व्यभिचार वर्ग की बुराइयों की संख्या 10 की गिनाई है। उन्होंने व्यभिचारी को समानता की दृष्टि से कुत्ता भी कहा है। वे लिखती हैं, जो पुरुष व्यभिचारी होते हैं उनका मन कुत्ते की माफिक हमेशा मैले ही में लगा रहता है। फिर यह 10 दोष उनमें झटपट आ जाते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, निंदा, दुर्वचन, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, छल। जहाँ इनमें से एक भी हो वहाँ कभी पुण्य या शुभ कार्य नहीं हो सकता, और जहाँ यह दशो होंगे वहाँ पाप का क्या ठिकाना है। ऊपर देखा गया है कि जब पुरुष व्यभिचारी बनता है तो लेखिका ने उसे कुत्ता कहा है, लेकिन जब औरत व्यभिचारिणी बनती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कुतिया ही कहा जाएगा। लेखिका ने माना है कि पुरुष की तरह औरत भी व्यभिचारिणी हो सकती है। वे लिखती हैं, बेशक जो औरत अपनी पसंद कर शादी करे और फिर उस खाविंद को धोखा दे, दूसरे के पास जाए, अजब नहीं कि उसके वास्ते ऐसा दंड हो। लेखिका ने व्यभिचारी स्त्री और पुरुषों को समाज में छूत की बीमारी फैलाने वालों के रूप में माना है। वे लिखती हैं, मरा हुआ आदमी अपने फैल अपने संग ले जाता है, मगर जिंदा आदमी खराब हो औरों को खराब रास्ते में घात करता है। बस यह जिंदा रह औरों की खराबी का बाइस बन जाता है। यहाँ बताया जा सकता है कि लेखिका के हिसाब से हिंदुओं के व्यभिचार की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने जाना है कि हिंदुस्तानी कभी बदफलों से तृप्त नहीं होते। अपनी पत्नी को खुद परपुरुष के पास भेजते हैं, लेखिका ने इसकी पक्की गवाही दी है। अगर पति कहे, मेरे फलाने दोस्त से बच्चा पैदा करो, तो फौरन चली जावे, चाहे अपना धर्म टूटे। और कई स्त्रियां इसी धर्म के पीछे अपने खास धर्म का भी ख्याल नहीं करती। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा है, इसका फल तमाम हिंदुस्तान में फैला है, जिसका फल यह है कि व्यभिचार करने को लोग कुछ पाप नहीं मानते, बल्कि जो इस काम में नहीं पड़ता उसे नामर्द करार देते हैं। पुरुषों के इस धर्म के तहत पंडितों द्वारा खाविंदों को जो सिखाया जाता है वह यह है, इस दुनिया में जिसने 2, 4, 10, 20 कन्याओं से संग नहीं किया उसका पैदा होना ही निष्फल है। लेखिका ने पंडितों द्वारा स्थापित पतिव्रता धर्म को उनका खुद मतलबी धर्म कहा है। वे लिखती हैं, यह पतिव्रता धर्म नहीं खुद मतलबी धर्म है। उन्होंने स्त्रियों को यह भी सलाह दी है कि बस अब तुम इस धर्म को छोड़ दो। वे नया धर्म खड़ा करने की बात कह रही हैं, बस अब इस जमाने के वास्ते नया धर्म बनाओ जिसमें स्त्री पतिव्रता धर्म करे, मर्द दूसरी का ख्याल ख्वाब में भी न लावे। लेकिन इसमें उनकी इच्छा यह कतई नहीं है कि मर्द स्त्री का गुलाम बन जाए। वे सदाचार की रक्षा करती हुई और मर्द और औरत को बराबरी पर लाती हुई लिखती हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मर्द स्त्री के ही वश में हो जाए। नहीं, जैसा पाप स्त्री को दूसरे पुरुष पास जाने से होता है, वैसे ही पुरुष को भी दूसरी स्त्री पास जाने से समझाओ। इस नए धर्म में विधवा को उनकी सलाह है, तुम्हारी बेहतरी की यही तजवीज अच्छी है कि जब दिल इस इंद्री के विषय को चाहे दूसरी शादी कर लो। यहाँ एक बात कही जा सकती है कि सीमंतनी उपदेश में विधवाओं की समस्याओं का खास जिक्र है, पर हिंदू विवाह में विधवा के पुनर्विवाह पर रोक का राज क्या है? राज इस डर में है कि कहीं कोई औरत अपने पति को मार न दे। क्योंकि द्विज पुरुषों में कामाचार की बदफैली की कोई सीमा नहीं है, इसलिए डर यह है कि औरत ऐसे पति को छोड़ सकती है और छोड़ने की अनुमति न मिलने पर उसे जान से मार सकती है। इसीलिए विवाह को पवित्र और अटूट बनाकर तथा विधवा के पुनर्विवाह की मनाही के द्वारा ऐसी पक्की गारंटी ली गई है कि किसी भी सूरत में नारी की मुक्ति संभव नहीं है और वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। क्योंकि शुरू में औरतें ब्राह्मण समाज की नहीं थीं, इसीलिए औरतों के साथ ऐसा कठिन बर्ताव किया गया था। बहुत सारी औरतें विजित जातियों से छीनी गई थीं, जिनका विश्वास नहीं किया जा सकता था। उनकी निष्ठाओं पर शक था। उनके माँ बाप और भाई मारे गए थे, इसीलिए उन्हें अपनी संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई गई। उन्हें जनेऊ भी नहीं दिया गया और शूद्रों की कोट में रखा गया था। लेकिन समय बीतने के साथ अब वे कारण मौजूद नहीं हैं। तब कानून के बदलने पर भी समाज में रिवाज के स्तर पर यह कायम क्यों है? इसका कारण है, इतनी सारी औरतें सेक्स के लिए घरों में फ्री में मिलती हैं। वे देवर, जेठ और ससुर के लिए खुली खेती होती हैं और पुजारियों तथा पुरोहितों के लिए पड़ा पाया खाजा हैं। सच तो यह है कि विधवा का होना हिंदुओं की जार मानसिकता का संस्थागत स्वार्थ बना हुआ है। इससे इन्हें अपने जार कर्म की सिद्धि साधने में मदद मिलती है और इनके पर किया काव्य की रचना में चार चांद लग जाते हैं। हाँ, सच्चे कवि की दृष्टि से वह समाज सहज और संवेदनशील नहीं कहा जा सकता जिसने विधवा के पुनर्विवाह पर रोक लगाने का कठोर चलन जारी किया और निर्दयी कानून बनाया। ऐसे समाज में कवि पैदा हो ही नहीं सकता, वह आत्महत्या ही कर लेगा। कवियों ने हिंदू समाज में 3,000 साल से आत्महत्या कर रखी है। कहाँ है कवि? परकिया में व्यभिचार से जबान गंदी होती है, वहां प्रेम के आंसुओं में सुबकती हुई पवित्र कविता के दर्शनों के टोटे पड़े हुए हैं। सीमंतनी उपदेश की लेखिका मानती है कि औरत भी हत्यारी हो सकती है। इस पुस्तक से इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरत अपने खाविंद और बच्चों की हत्यारी हो सकती है, वह किसी अन्य व्यक्ति को भी जान से मार सकती है। लेखिका लिखती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई पहले पहल औरत खाविंद में यहाँ से शुरू होती है और कई औरतों ने इसी जेवर के पीछे अपने खाविंदों को मार दिया है, वह आगे गवाही देती है। पांव के अंगूठे में एक अनबट नामी जेवर होता है, जिसके नीचे पांव अंगुल की कील छोटी अंगुली तक नीचे की तरफ रहती है। इसी जेवर से कई औरतों ने खून किए हैं। अपनी खुदगर्जी और बदफैली के लिए औरत कितनी निर्दयी हो सकती है, उसके माँ के रूप को लेकर इसके सबूते इस पुस्तक में बार बार मिलते हैं। वे लिखती हैं, क्या परमेश्वर की माया है कि जिस बच्चे को माँ अपनी तमाम मेहरबानियों से अपने ऊपर तकलीफ झेल कर पालती है, हाय उसी को यह कमबख्त माँ तमाम खुदा के कवानीनों को तोड़कर खुद अपने हाथों से हलाक करती है। तब औरत माँ नहीं रह जाती। लेखिका ने पूछा है, क्या उस बेगुनाह का खून करते परमेश्वर का खौफ भी तुम्हारे दिल में नहीं आता? क्या उस वक्त मादराना जोश भी अपना असर नहीं करता? क्या उसकी भोली भाली सूरत तुम्हारे दिल पर रहम पैदा होने नहीं देती? उस बच्चे का तो कुछ गुनाह नहीं, गुनाह तो आप ही का है। क्यों नहीं उस वक्त अपने ही गले में फांसी दी जब दिल ने बदफैली करने की तरकीब दी थी? नहीं, लड़के को फांसी देने के वक्त परमेश्वर का भी डर होना चाहिए था। यहाँ एक बात और बताई जा सकती है कि यह लेखिका हिंदुओं के कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती, जो पुनर्जन्म के झूठ से जुड़ता है। न यह पुनर्जन्म को मानती है और न उससे संबंधित मिथ्या कर्मवाद को। परलोक के बजाय यह लौकिक और कानूनी व्यवस्था में विश्वास करती है। लिखती है, अगर आप कोई नेक काम करोगी तो उसका पुण्य भी आप ही को मिलेगा। अगर बद करो तो भी आप ही को भोगना पड़ता है। जो जैसा करेगा वैसा इसी दुनिया में पावेगा। तुम किसी को जान से मारो, बस इसकी एवज में तुम्ही को फांसी होगी। जब औलाद इस दुनिया में हमको दुखों से नहीं छुड़ा सकती, तो उस दुनिया में जिसकी आज तक किसी को खबर नहीं हुई, क्या करेगी? पुनर्जन्म का खंडन करती हुई वह लिखती है, कोई आता नहीं है फिर मर के। अपनी इसी काव्य रचना में उसने आगे लिखा है, जाके आती नहीं मैं दुनिया से। अंत में मुझे विश्वास है कि मैं उस अज्ञात हिंदू औरत का नाम भी जरूर ढूंढ लूंगा। वैसे 21वीं शताब्दी की अपनी समकालीन औरतों में मैं यही ढूंढता हूं कि इनमें से कोई मीरा होगी, कि इनमें से कोई सीमंतनी उपदेश की अज्ञात लेखिका होगी। मेरा चिंतन प्रेम में ओतप्रोत है और मैं जीवन के उस सुख में झूम रहा हूँ कि मेरी शिकायत की सीमा चुकी हुई है। यह उनकी आज़ादी है कि वे अपने संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाती हैं या उसे कैसा नेतृत्व देती हैं। मैं उनके रास्ते में अड़ा नहीं खड़ा हूँ, बल्कि प्रेम में पिघला हुआ पड़ा पहाड़ हूँ। अफसोस की बात है कि चूड़े चांडाल की गाली यह लेखिका भी दे गई है। पोंकाला 6 फरवरी 2004 तिरुवनंतपुरम धर्मवीर।